मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। EFEIS के आज 5 दिसंबर 2019 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के रूप में मैं आपसे संसद में जो विधेयक पारित किए जाते हैं उनके एक विशेष स्थिति के बारे में कुछ बातें करूंगा, लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी खबरों को देख लेते हैं। न्यूज में आपने सुना कि हमारी मंत्रिमंडल ने कुछ महत्वपूर्ण विधेयकों को मंजूरी दे दी है, कुछ महत्वपूर्ण विधेयकों को। इसमें 3-4 सबसे इम्पॉर्टेंट विधेयक हैं, जिसमें एक है, आप जानते हैं कि हमारा नागरिकता संशोधन विधेयक, ये सब के सब 2019 के ही होंगे। और इसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण विधेयक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से, वह है निजी डेटा संरक्षण विधेयक, जिसे आप कहेंगे पर्सनल डेटा। इसका संबंध पर्सनल डेटा से है। इसके बाद इसी के साथ ही साथ एक संशोधन विधेयक है कि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के समुदाय के जो लोग हैं उनके आरक्षण को 10 साल के लिए और बढ़ाने संबंधी। तो ये 3 सबसे महत्वपूर्ण विधेयक हैं जिन्हें मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दी है। मित्रों, इन विधेयकों के बारे में हम लोग थोड़ी थोड़ी चर्चा कर चुके हैं। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से संबंधित विधेयक पर चर्चा नहीं हुई है। खासकर इस विधेयक के पीछे तथ्य यह है कि 10-10 साल के लिए ये बढ़ाया जाता है, और सुप्रीम कोर्ट ने बीच में ये बात कही भी थी सरकार से कि जिस तरह से कि ओबीसी में एक क्रीमी लेयर बनाई गई है, यानी कि एक निश्चित आमदनी से ऊपर के लोगों को यदि वो ओबीसी में है तो भी आरक्षण न दिया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा था कि अच्छा होगा कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए भी इस तरह की व्यवस्था हो। लेकिन सरकार अब चूंकि 10 साल के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव लेकर के आई है, तो देखिए जो ताकतवर है, जो संप्रभु है एक तरह से आप कह सकते हैं, वो तो संसद ही है। जरूरी नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट की इस तरह की बातों को मानने के लिए बाध्य ही हो। तो 10 साल के लिए ये जो आरक्षण है ये और बढ़ाया जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन इसके औचित्य पर हो सकता है कि सवाल पूछा जाए कि क्या ऐसा किया जाना चाहिए था, या सुप्रीम कोर्ट ने जो क्रीमी लेयर की बात कही थी वो इसके लिए कितना उपयोगी हो सकता है। देखते हैं, इस पर अब जो बहस होगी उसके आधार पर हम लोग फिर निर्णय लेंगे। मित्रों, जहां तक नागरिकता संशोधन विधेयक का सवाल है, आपको ध्यान होगा कि इस पर थोड़ी सी चर्चा मैंने इससे पहले की थी कि किस तरीके से जो इस विधेयक में व्यवस्था की गई है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से जो आए हुए लोग हैं, बशर्ते कि वो गैर मुस्लिम हो, तो उनको भारत की नागरिकता देने संबंधी जो अब तक के प्रावधान है उनमें थोड़ी सी ढिलाई दी गई है। ये क्या प्रावधान है इसके बारे में हम अभी चर्चा न करें तो बेहतर होगा, क्योंकि एक बार जब विधेयक पारित हो जाएगा तब इस पर बात करना ज्यादा उपयोगी होगा। अदरवाइज होगा क्या कि अभी के कुछ तथ्य आपके दिमाग में रह जाएंगे, फिर उस समय हो सकता है कि उन तथ्यों में कुछ बदलाव हो जाए, क्योंकि अभी तो लोकसभा में भी बहस होगी, राज्यसभा में भी बहस होगी, और तब जाकर के विधेयक पारित होगा। तो ये जब विधेयक पारित हो जाएगा तो हम लोग इस पर थोड़े से विस्तार के साथ बात करेंगे, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आपको ये भी मालूम है कि ऐसा नहीं है कि सरकार, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है तो ये आसानी से पारित भी हो जाएगा, क्योंकि इसको लेकर के जबरदस्त विरोध भी हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे राज्य हैं वो इसका बहुत विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि फिर तो जो बांग्लादेश से बहुत से जो हिंदू आए हुए हैं और आकर के जो उन क्षेत्रों में बस गए हैं उनको आप नागरिकता दे देंगे, और जब उनको नागरिकता दे देंगे तो वहां के जो मूल निवासी हैं उनके हक मारे जाएंगे। कुछ लोग, चूंकि इसमें गैर मुस्लिमों के लिए ही व्यवस्था की गई है, मुस्लिमों के लिए नहीं, तो इसे भी भेदभावपूर्ण मान रहे हैं। जो संविधान विशेषज्ञ हैं वो इसे अनुच्छेद 14 में जो समानता का अधिकार दिया गया है उसका उल्लंघन मान रहे हैं। तो इस तरीके से अलग अलग इस पर वाद विवाद की स्थिति है। देखते हैं आगे क्या सही स्थिति बनेगी, उस पर हम लोग बात करेंगे। इसके बाद है दोस्तों जो निजी डेटा को लेकर के जो मामला चल रहा है, इस पर तो आप काफी कुछ आर्टिकल्स पढ़ चुके हैं, बहुत दिनों से लगातार ये मांग हो रही है, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भाई इसके ऊपर आप विधेयक लेकर के आइए। तो अब चूंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है तो अब ये संसद में आएगा और फिर देखते हैं कि इसमें क्या क्या व्यवस्था की जाती है। लेकिन जो इसका जो क्रक्स है, यानी कि जो केंद्रीय बिंदु है, वो कुल मिलाकर के ये है कि चाहे वो कोई कंपनी हो या कोई साइट हो या कोई ऐप हो, आपका जो पर्सनल डेटा है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकती, यानी कि चुरा नहीं सकती, और अगर वो चुराती है तो उसके ऊपर बहुत भारी जुर्माना लगेगा। ये इसका केंद्रीय पॉइंट है, यानी कि हमारी जो निजी डेटा है उनके सुरक्षा की व्यवस्था इसके तहत की गई है। तो दोस्तों, जो मुझे दूसरी खबरों के बारे में बात करना था, बस इतनी ही जानकारी देनी थी। अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर। देखिए, मेरे मुख्य विषय का आधार क्या है? मेरे मुख्य विषय का आधार ये है कि अगर आप मेरा डेली ऑडियो लेक्चर लगातार सुन रहे होंगे तो आपको ध्यान होगा कि जनवरी 2019 में, इसी साल, लोकसभा में यह बिल पारित हो चुका था। यानी कि जो नागरिकता संशोधन विधेयक था, यह लोकसभा में पारित हो चुका था, राइट? तब लोकसभा में तो पारित हो चुका है, तो अब फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल को इस विधेयक को मंजूरी देने की क्या जरूरत हुई? अब तो लोकसभा में ऑलरेडी पारित हो चुका है, अब वो राज्यसभा में उसको सीधे सीधे भेज दिया जाता और राज्यसभा उसको अगर पारित कर देती तो राष्ट्रपति जी के पास वो बिल चला जाता, और अगर राज्यसभा पारित नहीं करती तो वो बिल खत्म हो जाता। तो फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे फिर मंजूरी क्यों दी है? देखिए, प्रोसेस क्या है। केंद्रीय मंत्रिमंडल तो सरकार ही है। कभी मैं इस पर आप लोगों को समझाऊंगा, कुछ डिटेल में मैं बात करूंगा इसकी व्यावहारिकता पर, है ना, संवैधानिक रूप से। और जो किताबों में बातें लिखी हैं वो तो आप जानते ही हैं, और हो सकता है कि आपकी समझ में भी आ गया, लेकिन उसे मैं एक डेमोक्रेसी की आत्मा के तौर पर समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे ये पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दोस्तों, जब ऑलरेडी लोकसभा पारित कर चुकी है, यानी कि पहले तो वो, अब क्या स्थिति होगी? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी दी है। पारित करना शब्द केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिए नहीं होगा, है ना, इन्होंने स्वीकृति दे दी, मतलब मंत्रिमंडल ने फैसला किया कि हाँ ये होना चाहिए। अब ये चाहे पहले लोकसभा में जाए या राज्यसभा में जाए, पहले किसी एक हाउस में जाएगा, इसके बाद उसको दूसरा हाउस पारित करेगा, और जब दोनों पारित कर लेंगे तो राष्ट्रपति के पास जाएगा और साइन होने के बाद वो एक तरह से एक्ट बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा, अभी तो वह विधेयक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो आइए हम इस प्रावधान को देखते हैं, और इस प्रावधान को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि मुझे ध्यान आ रहा है कि 2 साल पहले के प्री एग्जामिनेशन में प्रश्न तो जरूर पूछा गया है, 2 साल पहले का हो सकता है या 3 साल पहले का ये प्रश्न पूछा गया था, तो मैं इसे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। फिर आप किताब में इसे देख लीजिएगा तो मेरे समझ से आपके दिमाग में बिल्कुल चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। देखिए, हमारे पास 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा क्या है? सही सदन तो लोकसभा है, क्योंकि लोकसभा में ही जो हमारे लोग हैं वो अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं, यानी कि हमारे राष्ट्र का जो सही प्रतिनिधित्व करने वाला जो सदन है वो लोकसभा है, ठीक है। राज्यसभा अलग तरह का सदन है, भले ही उच्च सदन हो, लेकिन हमारे लोग सीधे अपने में प्रतिनिधि नहीं भेजते। आपको मालूम है कि MLA फिर राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं, और ये राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, लगातार चलती रहती है, ये सिचुएशन हुई। तो यानी कि जो सही सदन है वह लोकसभा है। अब आप देखिए कि 2 शब्द हैं, ये शब्द आपको क्लियर होने चाहिए। एक है सत्रावसान और दूसरा है विघटन, ये 2 शब्द चलते हैं। तो सत्रावसान का मतलब क्या है? सत्रावसान का मतलब है कि जैसे आप अक्सर सुनते हैं कि सदन का बजट सत्र शुरू हो गया, संसद का शीतकालीन अधिवेशन शुरू हो गया, शीतकालीन सत्र शुरू हो गया। यानी कि लोकसभा वही है, बस वो बीच बीच में उनके सत्र शुरू होते रहते हैं, और जब शुरू होंगे तो फिर खत्म हो जाएंगे, और इसके बाद फिर शुरू हो जाएंगे। यानी कि एक पीरियड खत्म हो गया, ठंड के दिनों में मान लीजिए अभी हमारी संसद चल रही है, तो उसमें पता लगा 20-22-25 बैठक होंगी, इसके बाद बैठकें खत्म हो जाएंगी, फिर बजट सेशन शुरू हो जाएगा। तो ये हुआ सत्रावसान। सत्रावसान में हम देखते हैं सीधे सीधे कि वही लोकसभा होती है, वही राज्यसभा होती है। राज्यसभा तो चलिए वही होती है, लोकसभा वही होती है। विघटन का क्या मतलब हुआ? विघटन का मतलब है कि जो अभी हमारी लोकसभा है उसका कार्यकाल पूरा हो गया, या तो कार्यकाल पूरा हो गया या बहुमत सिद्ध न होने के कारण उसका विघटन हो गया, जो भी हो गया है, अब वो लोकसभा नहीं रही। अब जो लोकसभा आई है, जब ये विधेयक वगैरह लाए जा रहे हैं, तो ये नई लोकसभा है, इसमें नए प्रतिनिधि चुन करके आए हुए हैं। देखिए, हो सकता है कि वो, मान लीजिए एक आदर्श स्थिति के सारे वही प्रतिनिधि हों, जैसे अभी ले लीजिए हमारे प्रधानमंत्री तो वही है, लेकिन हमारे जो दूसरे मंत्री हैं वो वही, मतलब मंत्रालय उनके वही नहीं है, कुछ नए मंत्री आ गए हैं, और कुछ जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसमें बहुत से नए हैं, तो लोकसभा तो अब नई हो गई। तो अब आप देखें कि इस नागरिकता संशोधन अधिनियम के साथ क्या हुआ था। जनवरी में ये लोकसभा के द्वारा पारित किया गया, और उस समय भी मंत्रिमंडल ने इसे पारित किया होगा, डेफिनेटली पारित किया होगा नहीं कहना चाहिए, मंजूर किया होगा। तो दोस्तों लोकसभा ने उस समय इसे पारित कर दिया, लेकिन यह राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सका, राज्यसभा में नहीं गया। राज्यसभा में अगर चला गया होता तो जो भी होता, खैर चलिए। तो अब जो लोकसभा है हमारे पास, अब आप देखिए घटना जनवरी की है, बीच में चुनाव हो गए, तो अब जो लोकसभा, भले हमारे प्रधानमंत्री वही है लेकिन जो लोकसभा है वो नई है। तो अब इस नई लोकसभा ने ही इसे पारित नहीं किया था, इस नई केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे स्वीकार नहीं किया था। अब सब नए हो गए ना, तो जब सब नए हो गए तो स्वाभाविक है कि अब आप विधेयक को भी नए तरीके से ही लाएंगे। तो उसे अब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी दी है, इसके बाद अब फिर लोकसभा में जाएगा। ऐसा नहीं कह सकते कि भैया पहले वाली लोकसभा तो पारित कर चुका तो अब क्यों जरूरत है। नहीं नहीं, वो पहले वाली लोकसभा थी ना, बात बनी तो नहीं, अब नई लोकसभा आई है, अब नए तरीके से इस पर विचार करना होगा। नए लोग आ गए हैं, जनता की नई आकांक्षाएं हो सकती हैं, नए विचार हो सकते हैं, तो हम उन नएपन से अपने आप को कैसे वंचित कर सकते हैं। इसके साथ कुल मिलाकर के यही हुआ है। अब आप देखिए कि हमारे संविधान में प्रोविजन क्या है, मेरी समझ से अब मैं जब प्रोविजन पढ़ूंगा तो आप देखिए बड़े आराम से समझ जाएंगे। इसी को कहते हैं बेसिक समझ। और मैं याद दिलाना चाहूंगा हमारे जो ऑनलाइन क्लासेस के जो स्टूडेंट हैं, इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत विस्तार के साथ आप वीडियो लेक्चर में समझाया है। इसे आप ध्यान से आज सुन लीजिएगा, अगर आप समय निकाल सके तो, एकदम पुख्ता आपके दिमाग में चीजें हो जाएंगी। अब ये देखिए हमारे संविधान में क्या व्यवस्था की गई, मैं संविधान की भाषा पढ़ रहा हूं, चूंकि अब आप कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं तो ये भाषा भी आपकी समझ में आ जाएगी। मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ देता हूं। पहले हिंदी में, संसद में लंबित विधेयक सदनों के सत्रावसान के कारण व्यपगत नहीं होगा। व्यपगत का मतलब है लैप्स। ये बिल पेंडिंग इन पार्लियामेंट शैल नॉट लैप्स बाय रीजन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ द हाउस। मैंने आपको बताया कि सत्रावसान है तो ठीक है, कोई बात नहीं है, कोई भी बिल ऐसा नहीं है कि अब चूंकि सत्रावसान हो गया तो फिर नया बिल पेश किया जाएगा, नॉट एट ऑल, वो चलता रहेगा। फिर अगला दे रहे हैं कि राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसको लोकसभा ने पारित नहीं किया है, लोकसभा के विघटन पर व्यपगत नहीं होगा। अब आप देखिए कि राज्यसभा में कोई विधेयक है, भेज दिया गया है लोक, राज्यसभा में भी तो बिल प्रस्तुत किया जा सकता है ना, तो राज्यसभा में बिल भेज दी प्रस्तुत कर दिया गया था, लेकिन वो लंबित है, उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है और लोकसभा ने इसको पारित नहीं किया है। तो अगर लोकसभा भंग हो गई तो वो लैप्स नहीं करेगा, क्योंकि वो तो राज्यसभा में है ना, तो राज्यसभा तो भंग होती नहीं, तो ठीक है राज्यसभा उस पर अपना विचार करती रहेगी। अगर लोकसभा भंग हो गई है इस बीच में तो ठीक है, राज्यसभा उसको पारित करके और भेज देगी लोकसभा, तो ये नई लोकसभा उस पर विचार करेगी, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंग्लिश में है, ये बिल पेंडिंग इन द काउंसिल ऑफ स्टेट विच इज नॉट बीन पास्ड बाय द हाउस ऑफ द पीपल शैल नॉट लैप्स ऑन ए रिजोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, राइट। अब आखिरी क्या है, जो कोई विधेयक जो लोकसभा में लंबित है, यानी कि लोकसभा में है, या जो लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया है, अभी वाली जो सिचुएशन है लोकसभा द्वारा पारित किया गया है, और राज्यसभा में लंबित है, राज्यसभा में लंबित है या राज्यसभा में भेजा या नहीं गया है, जो भी आप कह लीजिए, लोकसभा के विघटन पर व्यपगत हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। इसको इंग्लिश में देख लीजिए, ये बिल विच इज पेंडिंग इन द हाउस ऑफ द पीपल आर विच हैविंग बीन पास्ड बाई द हाउस ऑफ द पीपल इज पेंडिंग इन द काउंसिल ऑफ स्टेट शैल लैप्स ऑन ए डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। यानी कि यहां जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान में रखनी है वह है लोकसभा, जिसका कार्यकाल 5 साल होता है, यानी कि 1-5 साल में जो लोकसभा बनी है, आई है, उसके काम अपने तक सीमित रहेंगे, उसने जो काम कर लिया वो ठीक है, अगर इसके कुछ काम बच भी गए हैं तो सब लैप्स हो जाएंगे। मैं सैद्धांतिक तौर पर कह रहा हूं, जब नई लोकसभा आएगी तो वो नए ढंग से अपने तरीके से सोचेगी और अपने तरीके से विचार करेगी। बस आप इस धारणा को अपने दिमाग में बनाए रखिएगा, तो मुझे लगता है कि आप इससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे प्री में, उन्हें आसानी के साथ सॉल्व कर लेंगे, बशर्ते कि आप इस मूलभूत बिंदु को पकड़े रहें। तो दोस्तों मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं कमलजीत कौर, मुकेश कुमार, मुस्तफा, रवि कुमार और अनूप राज, आप लोगों का बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।